मुख्य समाचारों में, विदेशों में फंसे हुए ऑस्ट्रेलियंस के लिए सरकार द्वारा और अधिक कुछ करने की मांग, भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम, और अगले महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा महाअभियोग परीक्षण। लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को विदेशों में फंसे 39,000 ऑस्ट्रेलियंस के लिए और अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। ये बात राष्ट्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगले महीने के मध्य तक ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर वर्तमान सीमा को बनाए रखने के लिए हुई सहमति के बाद आई है। कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में चिंताओं को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या अस्थायी रूप से अभी आधी की गई है। लेबर के स्वास्थ्य प्रवक्ता क्रिस बॉविन का कहना है कि विदेशों में रहने वाले सभी ऑस्ट्रेलियन लोगों को अपने घर वापस आने का अधिकार होना चाहिए।
Australians are Australians whether they are here or they are overseas. They deserve the support of their government. Now Scott Morrison is standing on the side of the street and watching the state premiers take the load of quarantine, managing this more contagious strain of the virus and potentially more dangerous strain of the virus with very little support from him. I say to Scott Morrison, look at your job description. And in your job description, there is quarantine. Australia's borders.
New South Wales में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सीवेज परीक्षण से पता चलता है कि कोरोना वायरस के निशान अभी भी समुदाय में मौजूद हैं। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लिन का कहना है कि प्रतिबंधों की एक और छूट की घोषणा बुधवार 27 जनवरी को की जा सकती है यदि मामले की संख्या कम रहती है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर चाटू यापा का कहना है कि टेस्टिंग किसी भी संभावित प्रकोप को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
New South Wales Health's sewage surveillance program has recently detected fragments of the virus that causes COVID-19 at two more sewage treatment plants in Liverpool and Glenfield. New South Wales Health urges everyone living or working in these suburbs to monitor for symptoms and get tested and isolate immediately if they appear.
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सोमवार 25 जनवरी से क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के लिए अपनी सीमा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए तैयार है, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ने 6 दिन से और क्वींसलैंड में 12 दिनों से कोविड-19 का मामला नहीं आया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति तो होगी, लेकिन स्वसंगरोध के 2 सप्ताह और परीक्षण की आवश्यकता रहेगी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के प्रस्तावित समय पर समझौता होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा महाअभियोग परीक्षण अगले महीने की शुरुआत से यानी 8 फरवरी से शुरू होगा। प्रतिनिधि सभा औपचारिक रूप से श्री ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग के आरोप को स्थानीय समय अनुसार सोमवार देर रात तक देगी और मंगलवार 26 जनवरी को प्रारंभिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन 8 फरवरी के सप्ताह तक ये बहस शुरू नहीं होगी, ताकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंत्रिमंडल के नामांकन की पुष्टि करने के लिए और साथ ही उनके कोविड-19 राहत बिल पर विचार करने के लिए सेनेट को समय मिल सके। सेनेट के प्रमुख नेता चक श्यूमर का कहना है कि श्री ट्रंप का परीक्षण निष्पक्ष होगा।
The January 6th insurrection at the Capitol, incited by Donald J. Trump, was a day none of us will ever forget. We all want to put this awful chapter in our nation's history behind us. But healing and unity will only come if there is truth and accountability. And that is what this trial will provide.
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करके कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को याद रखेगा। ये थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट। नेताजी का जन्म 23 जनवरी को ओडिशा के कटक में हुआ था। भारत सरकार ने उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उनकी 125वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे और भारत में केंद्र सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अगली बैठक की तारीख भी तय नहीं हुई। 11वें दौर की बातचीत में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, अब गेंद आपके पाले में है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से कोई प्रगति सामने नहीं आई है और सरकार कह रही है कि वो अपनी ओर से अधिकतम प्रयास कर चुकी है। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 77 सेंट और भारत के 56 रुपए 33 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में एंडी मरे का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ना आ सकने की वजह से बेहद निराश हैं और वो कोविड-19 से उबरने के बाद काम करने योग्य संगरोध सुविधा नहीं पा सके हैं। पुरुषों में पूर्व नंबर एक आत्म अलगाव से अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए और फिर 8 फरवरी से शुरू होने वाले ग्रैंड स्लैम के लिए उससे पहले कैसे क्वारंटीन में रह सकेंगे, इन सब पर आने वाली तार्किक चुनौतियों का हल नहीं खोजा जा सका है। 33 वर्षीय एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5 बार रनर अप रहे हैं, लेकिन कूल्हे की चोट के कारण उनके करियर में कई बार बाधा भी आई है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री। एडिलेड में बहुत गर्मी रहेगी, आंशिक रूप से बादल भी हैं, अधिकतम तापमान 41 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। कैनबरा में गर्मी रहेगी, अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में बारिश, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।